चलेगा ना।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
वृंदावन धाम की। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। सब भक्त लोग थक गए हैं क्या?
टूटा है वो।
टूटा है वो।
तो चलिए हम एक भजन गाते हैं। भजन गाने के पश्चात तो आप सब लोग का थकान मिट जाएगा भजन गा के, है ना। भगवान की कथा जो है ना अमृत के समान है, है? अमृत के समान। अभी अमृत का पान करेंगे ना तो सारा थकान दुख प्यास सब मिट जाएगा। माता जी इधर आइए, आ गए।
भूख मिट गया है।
भूख मिट गया।
ठीक है, आपका थकान।
तो भजन भजन सब लोग खोल लीजिए, हम गाएंगे। ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा गाया हुआ भजन है, उनके द्वारा रचित भजन है। तो हम उस भजन को गाएंगे। भजन के गाने के पश्चात आप अभी आज जिन जगहों पे आपने दर्शन करके आए हैं उनकी थोड़ी थोड़ी महिमा को हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है। वृंदावन रम्या स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्या स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर। कालिंदे नीरे राजा हंस के लिखो रे ताहे शोभे कनक कमल
कालिंदे नीरे राजा हंस के लिखो रे ताहे शोभे कनक
चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर
दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर।
पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रदन
नायिका
पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रदन मध्य रत्नासने बसिया से रुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका
मध्य रत्नासने रुई जाने
श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य
रम्यास्थान दिव्या चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर चिंता मणि धाम लावण्या राशि अमेया पड़ी थे काशे हस परि हस संभा लावण्या राशि अमेया पड़ी थे काशे हस परि हस संभा नरोत्तम दास कोए नित्य लीला सुख मोए सदा इत्पुरुक मोर माने
नरोत्तम दास कोए
नित्य लीला सुख मोए सदा इत्पुरुक मोर वृंदावन रम्या स्थान दिव्या चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर चिंता मणि धाम रतन मंदिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna वृंदावन रम्य स्थान तो हम सब भक्त लोग कहाँ पे हैं? वृंदावन धाम में है। वृंदावन जो कि एक रम्य स्थान है, चिंतामणि धाम है। चिंतामणि जानते हैं ना? चिंतामणि जहाँ पे चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि
चिंता से रही थे।
ये वृंदावन धाम ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम कुछ भी विचार करते हैं तो फलीभूत होता है। तो क्या हमको सबक मिलता है कि यहाँ पे कुछ गलत विचार नहीं करना चाहिए, है ना?
आता ही नहीं
नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उस प्रकार का हो जाएगा। तो वृंदावन धाम बहुत नरोत्तम दास ठाकुर बहुत वृंदावन धाम की जो महिमा इस भजन में डालते हैं और साथ साथ में अंतिम में यह प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन धाम की जो महिमा है और जो गाथा है वो हमारे हृदय में स्फुट हो जाए, इस प्रकार की नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। तो वृंदावन धाम बहुत महत्वपूर्ण धाम है जहाँ पे हम सब भक्त लोग बैठे हुए हैं इस समय। तो चलिए हम थोड़ा से मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के पश्चात हम आज के कुछ स्थानों का जो स्थानों का आप लोगों ने दर्शन करके लाए हम उस स्थानों के विषय में थोड़ा कथा करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्दाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुं वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलधरोष्टा पूरणेन्दुसुन्दर मुखान् अरविन्दनेत्राय कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। हरे कृष्णा। तो वृंदावन धाम में इस संध्या समय, ऐसे तो यहाँ पे रात्रि का समय हो गया है, लेकिन बॉम्बे वालों के लिए संध्या ही समय है, क्योंकि उनका रात्रि रात को 12 बजे होता है ना। 11-12 बजे पहले कोई सोते हैं बॉम्बे में?
नहीं
सोते हैं ना, इसलिए प्रचारक लोग 9 बजे से प्रवचन शुरू करते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे भी 9 बजे शुरू हुआ। तो देखिए वृंदावन धाम, कौन कौन लोग आज वृंदावन की परिक्रमा किए? हरी बोल। सब लोग किए वृंदावन की परिक्रमा कर दिए, जय। तो वृंदावन की देखिए महिमा तो अपार है, जैसे कि मैं उस दिन बरसाना में भी बता रहा था, ये बता रहा था कि ब्रज 84 कोश में चार गाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानोनंद ग्राम, है ना। वृंदावन और मधुपुरी ये भगवान का धाम, ये जो वृंदावन है ना ये भगवान से अभिन्न है। 12 वन है एक्चुअली, पूरे ब्रज में 108 वन है और 108 में से प्रमुखतः 12 वन जो है महत्वपूर्ण माने गए हैं, और इस 12 वनों में से सर्वश्रेष्ठ वन जो है कौन सा है? वृंदावन। इसलिए वृंदावन तत्पश्चात उसको वृंदावन जो और भगवान अभिन्न है, वृंदावन के लिए भगवान कहते हैं कि जो वृंदावन है क्या है, वह मेरा घर है। वृंदावन क्या है? भगवान का घर। इसलिए वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंद ग्राम। तो इस प्रकार से भगवान से अभिन्न है ये जो वृंदावन धाम है, वृंदावन ये वन जो है ये भगवान से अभिन्न है, कृष्ण का घर है वृंदावन। इसकी पुष्टि बहुत सारे पुराणों इत्यादि में की गई है कि किस प्रकार से भगवान का ये जो धाम है जो अनित्य है। जब प्रलय होता है ना, प्रलय के समय में क्या होता है, ये जो सृष्टि है वो चली जाती है, प्रलय हो जाता है उनका, लेकिन ये जो ब्रज है, वृंदावन धाम है जो, ये ब्रज का कभी भी प्रलय नहीं होता है, वो नित्य रूप से है, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पे विराजमान रहते हैं। भगवान वृंदावन छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, कभी भी वृंदावन छोड़ के भगवान कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। जैसे कि हम अगर विचार करें कि ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान तो यहाँ पे 11 साल तक लीलाएं की वृंदावन में, उसके बाद तो लगभग 100 साल तक 110 साल तक वो क्या राज किए? द्वारिका में किए। लेकिन आप द्वारिका की सारी लीलाओं को पढ़िए, वहाँ पे द्वारिका की जितनी भी लीलाएं हैं आप वहां पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान कृष्ण केवल रात्रि में स्वप्न देखा, वृंदावन के स्वप्न देखा करते, हे राधे करके चिल्लाते थे रात को, केवल वृंदावन का स्मरण करते थे। और वैसे भी जो बच्चे चाइल्डहुड का जो पास्ट टाइम है ना, उसे हर एक लोग को प्रिय होता है। अपना बचपन की यादें याद करिए तो सबको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है बचपन की यादें। तो भगवान वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं, वृंदावन छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम जो है भगवान का घर है, भगवान का घर। इसलिए प्रलय के समय भी इस वृंदावन धाम का प्रलय नहीं होता है, वो नित्य रूप से है, क्योंकि भगवान का घर है, भगवान यहाँ पे विराजमान है, तो इसका प्रलय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वृंदावन और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और वृंदावन धाम ये जो है भगवान का घर है। एक बार की घटना है कि नारद मुनि भ्रमण करते करते अपनी बीड़ा को बजाते बजाते, नारद मुनि बजाए बीड़ा राधिका रमन नाचे। तो नारद मुनि जो कि बीड़ा बजाते बजाते, एक बार की घटना है कि वह प्रयागराज तीर्थराज जो तीर्थों के राजा है वहां पे पहुंचे। कौन पहुंचे? नारद मुनि। कहां पे पहुंचे? तीर्थों के राजा जो प्रयागराज है उनके पास पहुंचे नारद मुनि, बीड़ा को बजाते बजाते उनके पास पहुंचे। और जाकर उनके पास पहुंचने के पश्चात वह उनका कुशल क्षेम पूछे कि कैसे आप हैं। तो उस समय तीर्थराज प्रयागराज जो थे वो बहुत सुंदर तरीके से बताने लगे कि किस प्रकार से भगवान ने हमको सारे तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान ने क्या बनाया? सारे तीर्थों का राजा बनाया उनको। इस प्रकार से किस भगवान की कृपा का वर्णन करने लगे तीर्थराज प्रयागराज। और वर्णन करते करते वो बताने लगे, और उसके पश्चात नारद मुनि बहुत ध्यान पूर्वक सुने, और सुनने के पश्चात नारद मुनि ने उनसे पूछा, अच्छा आप तो सारे तीर्थों के राजा हैं, तो निश्चित रूप से सारे तीर्थ आपके पास आकर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको प्रणामी देते रहेंगे, कर को देते रहेंगे, क्योंकि आप तीर्थों के राजा हो। जनरली जैसे कि एक राजा है तो निश्चित रूप से उसकी प्रजा जो है उसको कर दिया करता है, उनकी प्रजा जो है उनको कुछ न कुछ दिया जाता है कर के रूप में, या तो धन हो या तो धान्य हो, कुछ न कुछ उनको अर्पण करते हैं क्योंकि वो राजा है। तो निश्चित रूप से आपको सारे तीर्थ जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको भेंट देते रहेंगे। तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि निश्चित तौर पे सारे तीर्थ आते हैं मेरे पास और आके मुझे कुछ न कुछ तो भेंट देते ही है। तो नारद मुनि, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि नारद मुनि फेमस है, किसके लिए फेमस है? चुगली लगाने में। लेकिन नारद मुनि महान भक्त है भगवान के, बीड़ा बजाते हैं। मैं पहले बताया, नारद मुनि बजाए बीड़ा राधिका रमण नाचे है, हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। तो नारद मुनि ने पूछ डाला, अच्छा सारे तीर्थ आपको कर देते हैं, सारे तीर्थ आपको कुछ न कुछ भेंट देते हैं, तो क्या मेरा प्रश्न है कि क्या वृंदावन जो है आपको भेंट देता है? नारद मुनि के अंदर जिज्ञासा हुई, क्योंकि नारद मुनि वृंदावन की महिमा को जानते थे, वृंदावन क्या है वो नारद मुनि जानते थे। इसलिए उन्होंने तीर्थराज प्रयागराज के पास बोला कि क्या प्रभु आपको क्या ये वृंदावन कुछ आज तक भेंट दिया? तो तीर्थराज ने विचार करने लगे कि आज तक तो नहीं दिया, पूछने लगे अपने मंत्रियों से, अपने जो भी अनुचर थे उनके राजा के, सबको पूछने लगे कि वृंदावन ने आज तक कर दिया क्या या कुछ भेंट दिया क्या लाकर। बोले कि हम हर बार उनसे भेंट मांगने के लिए या कर मांगने के लिए गए, लेकिन वो यही बोलता था कि बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ, अभी नहीं है बाद में देता हूँ, जब होगा तब दूंगा, इस प्रकार से बोल बोल के टाल दिया। तो तीर्थराज प्रयाग बोलने लगे नारद मुनि को कि आज तक तो वृंदावन कर कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो नारद मुनि तुरंत बोले कि प्रभु तब आप कौन से सारे तीर्थों के राजा हुए, जब आपको वृंदावन कुछ आज तक भेंट दिया ही नहीं, तब तीर्थ राज के रूप में आप कैसे प्रचलित है? ये कौन सा तीर्थ का राजा बनाया आपको भगवान ने? तो सच में वो विचार करने लगे, और विचार करने की व्यवस्था कहाँ जाएंगे, अंततः भगवान के पास गए जिन्होंने राजा बनाया है, तीर्थों का राजा बनाया उन्हीं के पास गए। उनके पास जाकर बोलने लगे, प्रभु आपने हमको सारे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ मुझे कुछ न कुछ भेंट देते हैं, लेकिन वृंदावन तो कभी भेंट देने ही नहीं आया, और उसके उपरांत जब उनसे मांगने भी गए तो कुछ न कुछ बोल के टाल दिया। तो भगवान कृष्ण बहुत मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए बोले कि तीर्थराज, मैंने तुमको सारे तीर्थों का राजा बनाया है, सारे तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन मेरे घर का राजा तुमको थोड़ी ना बनाया है। वृंदावन क्या है, मेरा घर है, मेरे घर का राजा तुमको नहीं बनाया हूँ, इसलिए वृंदावन को तुम पूजा करो, उससे तो कुछ भेंट मत मांगो, वो मेरा घर है, घर है वृंदावन। इसलिए भगवान कृष्ण ना वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं बाहर, कभी भी नहीं जाते वृंदावन छोड़ के। तो वृंदावन की महिमा तो अपार है। इस वृंदा इस पूरे ब्रज का, एक्चुअली में पूरे ब्रज का देखभाल करने के लिए महादेव शिव जी वो चारों बाजू पूरे ब्रज के चारों कोने में शिव जी इसकी देखभाल करते हैं, उनकी एक सेवा, क्योंकि ब्रज में हर एक व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ हमको सेवा प्राप्त हो। तो शिव जी इस ब्रज की पूरा रक्षक करने के लिए चारों तरफ से वह स्थित है, जैसे कि भूत मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में वह स्थित है। और उसके बाद आज आप लोग वृंदावन में गए, वृंदावन दर्शन किए, तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में वह स्थित है, और गोवर्धन में जाएंगे तो वहाँ पे चकलेश्वर महादेव के रूप में स्थित है, और उसके बाद काम्यवन जाएंगे तो वहाँ पे कामेश्वर महादेव के रूप में स्थित है। इस प्रकार से चारों कोने में शिव जी इनकी देखभाल करते हैं। तो आज जैसे कि आप लोग परिक्रमा करना प्रारंभ किए होंगे, तो शुरुआत वहाँ से किए रहेंगे अपना इस्कॉन मंदिर के पास से। तो परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले हम जब स्टार्ट प्रारंभ करते हैं तो थोड़ी ही दूर पे कृष्ण बलराम ट्री आता है। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी कथा के दौरान दर्शन कर लीजिए। कृष्ण बलराम ट्री थोड़े ही दूर पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के डिस्टेंस पे परिक्रमा स्टार्ट करते ही आ जाता है कृष्ण बलराम ट्री। और ट्री बहुत प्राचीन ट्री है, ऐसा वर्णन है कि वहाँ पे कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ वहाँ पे खेला करते थे उस वृक्ष के ऊपर, कृष्ण बलराम, इसलिए उस वृक्ष का नाम कृष्ण बलराम ट्री पड़ा। थोड़ा ही आगे गए होंगे और आगे जहाँ से रास्ता टर्न होता है वो जगह जो है वह बराह घाट के रूप में फेमस है। अभी अभी बराह घाट वो घाट है एक्चुअली, लेकिन यमुना जी दूर चली गई है, पहले यमुना वहाँ तक थी, नज़दीक थी, लेकिन अभी यमुना जी काफ़ी दूर चली गई हैं। तो वराह घाट के रूप में फेमस है वह स्थान। तो वराह घाट मतलब वहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों मित्रों के साथ वहाँ पे खेलते खेलते वो एक बार आवेश में आ गए। क्या आवेश में आ गए कि मैं बराह हूँ, मैं ही बराह हूँ, मैं ही पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर आया। इस प्रकार से आवेश में आकर भगवान ने वहाँ पे बराह देव का दर्शन कराया था उन ग्वाल बालों मित्रों का को, इसलिए वह स्थान बराह घाट के रूप में फेमस हुआ। और उसके बाद थोड़ा ही आगे और जाएंगे, जैसे ही अपना इस्कॉन का गौशाला करते करते थोड़ा आगे जाएंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है, वह है कालियादह। कालियादह का कौन दर्शन किए, कालियादह का वाला स्थान? हाँ, तो एकदम परिक्रमा मार्ग पे ही है कालियादह स्थान। तो वहां पे भगवान ने क्या किया था कालियादह पे, कालिया का दमन किया था। तो थोड़े से हम उन कथाओं को, कालियादह की कथाओं को हम सुनते हैं। तो एक बार की घटना है कि वह जो स्थान है कालियादह, उस स्थान पे एक महान ऋषि सौभरी ऋषि उस स्थान पे तपस्या करते हैं। और वो तपस्या कैसे करते थे, कहाँ पे करते थे, वह जल के अंदर उस स्थान पे यमुना के अंदर प्रवेश करके वो तपस्या करते थे। जो ऋषि होते थे वो क्या करते हैं, वो ऐसे जगह पे दूर जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति का वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, इस संसार के मोह माया से भाग हटकर वो एकांत में होकर भजन करते हैं। महान महान ऋषि हैं। इस प्रकार का हम देखेंगे जितने भी ऋषि मुनि हुई है ना, वो सब लोग का जीवन शैली में देखेंगे आपको, किधर न किधर जंगल में इधर तपस्या कर रहे हैं, उधर तपस्या कर रहे हैं, वो हमेशा संसार के इस माया से सब दूर हटके अपना भजन करते हैं। तो सौभरी ऋषि जो कि महान महान भक्त भगवान के महान ऋषि, वो यमुना के जल के अंदर प्रवेश करके वहां पे तपस्या करते थे। कौन है यमुना के जल के अंदर, कौन जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए, कोई नहीं जाएगा, इसलिए वहां पे भजन करते थे सौभरी मुनि। वो स्थान सौभरी मुनि का भजन स्थली स्थान है कालियादह का जो स्थान है, तो उसके पानी के अंदर सौभरी मुनि रह के भजन करते थे। तो एक दिन की घटना है कि गरुड़देव, उस गरुड़देव को जानते हैं ना, भगवान वाहन, तो गरुड़देव वहां से निकल रहे थे, उनको भूख लगी। अभी गरुड़देव को भूख लगी तो उनका आहार क्या है, सर्प है, मछली है, ऐसा ही कीट पतंगों को ही खाते हो, मछली भी है, जितने भी कीट पतंग वो खाते ही है, है ना, उनका आहार है वो। तो उनको भूख लगा उस यमुना के को जैसे ही क्रॉस कर रहे थे उस स्थान को जहां पे सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो गरुड़देव वहां से क्रॉस कर रहे थे, उनको भूख लगा तो उन्होंने अचानक देखा कि अभी यमुना है तो यहाँ पे मैं डुबकी मारूंगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे कुछ मछलियां मिल जाएंगे खाने के लिए। और सच में वहां पे उन्होंने डुबकी मारा और वहां पे कुछ मछलियों को उन्होंने खाया और वापस निकल गए। तुरंत ही क्या हुआ कि वो सारे मछलियों का जो फैमिली था, परिवार था, क्योंकि उनका भी परिवार होता है ना, है ना, जल के अंदर उनका भी परिवार होता है, तो उनके परिवार में से किसी एक को, एक दो को खा गए हो और खा के निकल गए। तो उन्होंने विचार किया कि बार बार को गरुड़देव आके कुछ ना कुछ यहाँ से निकले के हमारे परिवार को लेके चले जाते, खा जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या देखा कि एक ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहा है इस जल के अंदर, तो सारे मछलियों ने मिलकर ऋषि के शरण में गिर गए कि ये त्राही माम करके गिर गए कि हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार में से बार बार गरुड़ जी आते हैं और बार बार इसमें से खा के निकल जाते हैं, बहुत बहुत तकलीफ में हम, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करिए, हम आपके शरणागत हो गए। तो इस प्रकार से सारी मछलियों का जो झुंड है सौबरी मुनि के शरण में चले गए। और सौबरी मुनि के शरण में जाने के पश्चात उन्होंने उनसे कृपा की, याचना की, और सौबरी मुनि ने अभी बहुत ज्यादा, अभी क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, फोकट का डिस्टर्ब कर रहे, अभी मैं बाहर के संसार से आके जल में तपस्या कर रहा हूँ, ये मछली लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, आज से गरुड़ देव यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा, अगर गरुड़ देव इस स्थान पे आए तो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार का श्राप दे डाले सौबरी मुनि, महान ऋषि तो थे ही, श्राप दे डाले। विचार करिए कि श्राप दिया तो दिया, किसको दिया, भगवान के एक महान भक्त को दिया, गरुड़देव जी भगवान के महान भक्त है, महान भक्त को दिया उन्होंने श्राप। लेकिन देखिए, विचार करिए कि जब हम किसी भक्तों के प्रति अगर अपराध कर बैठते हैं, सौबरी मुनि वहां पे तपस्या कर रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए, उन्होंने तपस्या कर रहे थे वहां पे, संसार की मोह माया से दूर होकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन कुछ मछलियों के गुहार लगाने से उन्होंने क्या किया, इतने बड़े भक्त गरुड़ देव के चरणों में अपराध कर बैठे, और गरुड़ देव के चरणों में जैसे ही अपराध कर बैठे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ये अपराध है ना, ये पागल हाथी के समान है, वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, इस प्रकार से वर्णन से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये जो वैष्णव के भक्तों के बीच में जो अपराध है ना, अपराध करता है व्यक्ति ना, तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, कोई भी बचा नहीं सकता। एक बार पाप करेगा व्यक्ति, हरिनाम उसका उद्धार कर देगा, लेकिन भक्तों के चरणों में एक बार अपराध किया तो उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। तो सौबरी मुनि ने इतने महान भक्त गरुड़ देव का उन्होंने अपराध किया, और जैसे ही अपराध किया, गरुड़ देव तो चले गए थे लेकिन श्राप दे डाला उनको कि वहां पे आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। तो जैसे ही अपराध किया, अभी देखिए यहां पे सौबरी मुनि का किस प्रकार से पतन हुआ, अपराध करते ही वहीं पे उन्होंने उन्हीं मछलियों के झुंड को, नर और मादा मछलियों के झुंड को उन्होंने आपस में संग करते हुए देखा, आपस में संग करते हुए देखा और उनके अंदर काम वासना जागृत हो गया। इतने बड़े ऋषि तपस्या जल के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव अपराध के कारण उनकी ध्यान भंग हो चुका, और उन्हीं जिन मछलियों को उन्होंने प्राण उनको रक्षा किया था, उन्हीं मछलियों को आपस में संग करते हुए देखकर उनके अंदर काम वासना की इच्छा जागृत हुई। तुरंत ही सौबरी मुनि उस यमुना के जल से बाहर निकलकर मथुरा के राजा, उस समय मानधाता थे, मथुरा के राजा मानधाता के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि मानधाता की बहुत सारे पुत्रियां हैं, मैं उनको विवाह करूंगा उनसे। तुरंत ही निकलकर उस जल से वह राजा के इधर पहुंच गए, राजा मानदाता के इधर पहुंचे, और वहां पे जाकर उन्होंने बोला कि मुझे आपके पुत्री से विवाह करना है। देखिए वैष्णव अपराध का फल कितना डेंजरस होता है, इतने बड़े ऋषि और उनका पतन हो गया। तो अभी राजा मानदाता के पास गए तो राजा मानदाता विचलित हो गए, क्योंकि ये तो ऋषि थे, इतने बड़े योगी, और ऊपर से शरीर एकदम जीर्ण हो चुका है, बूढ़े हो चुके हैं, और उनके दाढ़े मुक्ति इस प्रकार से पक चुके हैं, बाल बड़े हो चुके हैं, और देखकर वो विचार करने लगे कि क्या ये साधु महात्मा क्या बोल रहे हैं, हमारी पुत्री से विवाह कौन इनसे विवाह करेगा, लेकिन विचार कर रहे हैं, अंदर बोल नहीं सकते थे क्योंकि एक ऋषि थे, अगर वह मना कर दिए तो निश्चित रूप से उनको श्राप, उनको मालूम था अगर मैं मना किया तो ऋषि श्राप दे डालेंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरा, इसलिए उन्होंने विचार किया और विचार करके उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप क्या करिए हमारे जो उनकी 50 कन्याएं थी आप उनको उनके पास जाइए, उनसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वयं से रखिए, अगर वो राजी है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से राजा मानधाता ने ये सौवरी मुनि को इस प्रकार से बोला, लेकिन ऋषि विद्वान थे, वो समझ गए, सौवरी ऋषि समझ गए कि मैं मेरा जो शरीर यह विवाह करने योग्य नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, वो तुरंत समझ गए राजा के इस प्रकार की बातों से, और तुरंत ही उन्होंने फिर से तपस्या किया, तपस्या करके अपना शरीर नव युवक शरीर प्राप्त कर लिया, नव युवक शरीर प्राप्त किया, और नव युवक शरीर प्राप्त करने के बाद उन कन्याओं के पास गए। अभी प्रॉब्लम यह हुआ कि वो सारे के सारे कन्याएं उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, सब मोहित हो गई, ले तो सौवरी मुनि ने उन 50 कन्याओं से विवाह किया और उनके साथ रहने लगे। देखिए कहां से कहां पहुंचे, केवल एक कारण वैष्णव अपराध, ये वैष्णव अपराध का फल। खैर अभी देखिए यहां पे श्राप क्या दिया कि गरुड़ देव जी यहां पे वापस आएंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। तो अभी दिक्कत, अभी ये बात जैसे ही पता चला किसको, कालिया नाग को, कालिया जा के लीला करें, कालिया नाग को जैसे ही पता चला, कालिया नाग समुद्र के अंदर रमणक द्वीप स्थान पे कालिया नाग रहता था अपने सब फैमिली परिवार के साथ, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम यही था कि कभी भी गरुड़ जी टपक जाते थे और किसी एक को उठा के लेके चले जाते। हालांकि उन्होंने बहुत सारा पॉलिसी बना दिया था, पॉलिसी ये बनाया था कि आप इस प्रकार से किसी को भी मत उठा ले जाइए, आप कब आ रहे हैं वो एक साल में दो बार आएंगे, एक महीने में एक बार आएंगे, जब भी आ रहे हैं आप हमको बता दीजिए ताकि हम किसी एक को रेडी करके रखेंगे, भाई तुम्हारा बलिदान करना है अभी। तो लोगों ने इस प्रकार का प्लान करके शेड्यूल बना के चल रहे थे कि गरुड़ जी जाएंगे तो उसको रेडी रखते थे, गरुड़ जी लेके जाते थे, ये शेड्यूल बना के रखा था। तो अभी शेड्यूल बनाने के बाद भी मान लीजिए किसी का नंबर आ रहा है कि भाई अभी इसको इस बार जाना, तो टेंशन तो होता ही है, कौन मरना चाहेगा, कौन शरीर को छोड़ना चाहेगा, कौन मरना चाहेगा, बिल्कुल नहीं मरना चाहता है, तो टेंशन तो रहता ही था। जैसे ही ये बात पता चला कि गरुड़ देव एक स्थान पे नहीं जा सकते, कौन सा स्थान, उस यमुना के किनारे, यमुना के तट पे नहीं जा सकते, यमुना में नहीं जा सकते क्योंकि सौवरी ऋषि ने श्राप दिया है, क्योंकि वहां पे हो जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, तुरंत ही कालिया रमणक द्वीप छोड़कर कहां पे निवास करने लगा, यमुना में निवास करने लगा, पूरा फैमिली उठ के कहां पे आया, यमुना में। देखिए अभी अभी क्या होता है, क्योंकि कालिया जो था विष, उसके इसका विष का इतना प्रभाव था उसका कि वो जो अभी सब फैमिली आ गया वहां पे और उसके विष के प्रभाव से पूरा यमुना का जो जल है वह विषैला बन गया। अभी सौवरी मुनि ने क्या किया, कुछ मछलियों को बचाने के चक्कर में गरुड़ देव को श्राप दिया, उसका परिणाम क्या हुआ, उनका खुद का पतन हुआ। अभी जिन मछलियों को बचाने का प्रयास किए थे यहाँ पे कालिया आकर रहने लगा तो उस विषैले प्रभाव से सारी मछलियां मर गई। देखिए ये वैष्णव अपराध का फल, जिन मछलियों को बचाने के लिए गरुड़ देव को श्राप दिया उन मछलियां कालिया के आने से सारे के सारे मर गए, एक भी जंतु कुछ का यमुना में नहीं बचा, एकदम जल विषैला बन गया। और जल विषैला होने के कारण भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण सारे ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया को चराने के लिए वहां पे जब आए तो क्या हुआ, जल को पान करते ही गैया भी मूर्छित हो गई। इस प्रकार से एक कथा को आप लोग आगे जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण उस कालिया का दमन किए। फिर भगवान कृष्ण खेल खेल में, हाँ ये कथा सब लोग जानते हैं कि बाल वो गेंद चला जाता है, भगवान कृष्ण कूद जाते हैं, एक तो माध्यम था गेंद को जाना लेकिन उद्देश्य था कालिया का दमन करना। भगवान कृष्ण ने महान बड़ा युद्ध चला कालिया के साथ, युद्ध करने के पश्चात जब कालिया समझ गया कि और कोई नहीं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, इसको पराजित नहीं किया जा सकता है, फिर कालिया उन्हीं भगवान कृष्ण को अपने मस्तक पे अपने सर पे बैठा कर ऊपर लेके आते हैं। इस दृश्य को याद करते हुए गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम् तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्देच्छयम्। इस घटना को याद करते हुए गोपियां कहती हैं कि भगवान का जो चरण कमल है, क्योंकि कालिया अभी समझ गया और भगवान को अपने चरणों को अपने सर पे धारण करके भगवान को ऊपर लेके आया और भगवान ने बहुत सुंदर कालिया के ऊपर नृत्य किया। इस बात इस लीला को याद करते हुए गोपियां कहती है कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हे प्रभु आपके जो चरण है ना, किसी के ऊपर पड़ने से, चरण का स्मरण करने मात्र से प्रणत देहिना पाप कर्षण, उसके सारे हृदय के अंदर जितने भी पाप है, जन्म जन्म के पाप वह यो नष्ट हो जाते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतन, ऐसी चरण कमल जो है आपका, जिसकी इतनी महिमा है, आपके चरण कमल इतने कोमल है, उन घास के तिनकों पे वो पड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से तकलीफ होता रहेगा। इस प्रकार से गोपियां इस बात को वर्णन करते हुए कहते हैं फणिर फणार्पितम ते पदाम्बुजम, कि आपका ये जो चरण है कालिया के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर, फणिर फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपका चरण जब कालिया नाग के ऊपर पड़ा तो उसके हृदय के अंदर जितने भी विष थे, जहर थे, सब कुछ खत्म हो गया और वो आपके शरण में हो गया। और ऐसे जो चरण है आप हमारे स्तनों के ऊपर रखिए, ताकि हमारे अंदर जो काम वासना है, गोपियां इस बात को तो कहती हैं, लेकिन ये गोपियों के अंदर कोई काम वासना नहीं था, वो जो प्रेम का स्तर है ना बहुत ऊंचा स्तर था, लेकिन इस जगत को शिक्षा देने के लिए ये बात आचार्यगण बताते हैं कि गोपियां कहते हैं कि आप ऐसे चरण कमल को हमारे स्तनों के ऊपर रखिए, ताकि हमारे हृदय के अंदर जो पाप है, जो कामना है, वो सब नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान कृष्ण ने इस कालिया का दहन किया, कालिया का दहन किया। और उसके बाद आप लोग परिक्रमा से थोड़ा और आगे गए होंगे तो आप एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर देखे होंगे, कौन सा मंदिर था वो? मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो कि बहुत विशाल, अभी तो जो देख रहे हैं ना ये 7 मंजिल का था, उसमें से 1 मंजिल बचा हुआ है, विचार करिए कितना बड़ा रहा होगा वो, 7 मंजिल का था वो, 1 मंजिल बचा हुआ है। तो मदन मोहन मंदिर जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। एक पंगु से पंगु व्यक्ति भी मदन मोहन की कृपा से पर्वत को लांग सकता है, उनकी कृपा से एक मुंह गुंगा व्यक्ति बोलने लगता है। जयताम श्रुतो पंगो मोहन मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। तो राधा मदन मोहन मंदिर जो है उसकी भी महिमा अपार है। हमने बहुत सारे मंदिरों का नाम भेजा था, आप लोग को मिला रहेगा, उसमें से महत्वपूर्ण, उसमें से भी जो मैंने नाम भेजा, बहुत सारे 7-8 विग्रहों का नाम भेजा था, उसमें से भी महत्वपूर्ण 3 विग्रह है, एक है राधा मदन मोहन और दूसरे है राधा गोविंद देव और तीसरे है राधा गोपीनाथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों के जीवन में, ये तीनों विग्रह, क्योंकि हमारे संबंध अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान जो है ना उसको बताते हैं। तो मदन मोहन जो मंदिर है वो देखिए एक टीला, उसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं, है ना, वो एक पहाड़ के जैसा है, उसके ऊपर वो मंदिर है, देखो ना जमीन से काफी ऊपर है मंदिर, तो उसको द्वादश आदित्य टीला बोलते हैं। उसका नाम द्वादश आदित्य टीला क्यों पड़ा है, क्योंकि जब भी भगवान यहाँ पे कालिया का दमन किए, कालिया के दमन करने के पश्चात, क्योंकि वो कितने घंटों क्या किए थे उन्होंने, जल के अंदर रहकर कालिया के साथ युद्ध किए थे, इसलिए कहते हैं कि भगवान को ठंडी लग गया था, इसलिए उस टीले के ऊपर चढ़ गए भगवान, और वहां पे द्वादश आदित्य टीला इसलिए नाम पड़ा कि सूर्य देव द्वादश प्रकार के 12 प्रकार के सूर्य से ताप दिए थे भगवान कृष्ण को, इसलिए उस स्थान का नाम द्वादश आदित्य टीला पड़ा। तो भगवान कृष्ण वहां पे क्या किए, धूप लिए थे। तो उस टीले के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर है, और मदन मोहन जी का जो प्राकट्य है वहां पे सनातन गोस्वामी पाद, जिन अगर भक्तों को नींद लगे तो वो लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि मैं प्रवचन कराओ तो बैठना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आप लोग के माध्यम से मेरा भी स्मरण हो जाए वृंदावन का लीला कथाओं से, तो जिनको दिक्कत है वो सो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग चिंता मत करें कि मैं कुछ गुस्सा करूंगा या फिर उठ के चले जा रहे, ऐसा नहीं है। मैं तो विचार किया था दो तीन लोग भी बैठे तो भी करूंगा, बहुत लोग है बैठे। तो मदन मोहन मंदिर का जो प्राकट, मदन देव का प्राकट्य कैसे हुआ उसका मैं एक कथा बताता हूँ। तो सनातन उस द्वादश आदित्य टीला के ऊपर सनातन गोस्वामी का भजन कुटी है, देखा आप लोगों ने, मंदिर के ठीक बाजू में सना बहुत छोटा सा एक कुटिया है, वो सनातन गोस्वामी का भजन कुटी है। हाँ, तो सनातन गोस्वामी पाद वहां पे रहते थे। सनातन गोस्वामी पाद कौन है? छह गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। हाँ, वृंदावन के छह गोस्वामी जो ये है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जो छह गोस्वामी है ना, इन गोस्वामी की कृपा है कि आज हम वृंदावन के इन स्थलों को देख पा रहे हैं। इन छह गोस्वामियों की कृपा है ना, इन्होंने प्रकटित कराया चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार। ये सारे जो सिक्स गोस्वामी है, इन इन नीला स्त्रियों की महिमा को जागृत किया, तभी जाके हम इस स्थान पे आके इनकी लीला को, कथाओं को सुन रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद वो वहां पे उस टीले के ऊपर रहकर उनके कुटिया में भजन करते थे। और सनातन गोस्वामी पाद का रूटीन ये था पूरा दिनचर्या कि उस स्थान से सुबह वो निकलते थे, उस अपने भजन कुटी से सुबह निकलते थे, कहां जाते थे? गोवर्धन जाते थे। अभी आप लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे, गोवर्धन जाते थे, पैदल जाते थे। ऐसा नहीं कि गाड़ी से बस से जाते थे, हमारे लिए तो बस खड़ी इधर ही खड़ी हो जाती है बस, लेकिन पैदल जाते थे वो अपने भजन कुटी से डेली, वो चल के गोवर्धन जाते थे और गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाते थे। पूरी परिक्रमा लगाने के बाद वो मथुरा जाते थे, मथुरा में मधुकरी करते थे, क्योंकि मधुकरी करने के लिए कोई संपन्न जगह चाहिए, है ना, क्योंकि मथुरा में संपन्न लोग रहते थे, वहां पे बाकी जगहों पे भिखारी लोग रहते थे, भजन करने वाले लोग रहते थे, लेकिन मथुरा था वो राजा की नगरी थी, इसलिए वहां पे संपन्न लोग रहते थे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी अपने भजन कुटी से डेली पैदल जाकर गोवर्धन जाते थे और गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाने के बाद वो मथुरा जाते थे, मथुरा में मधुकरी करते थे और मथुरा से मधुकरी करने के बाद वापस अपने भजन कुटी में आते थे और जो मिला उसको ग्रहण करके वापस वो भजन करते थे और वहां पे थोड़ी देर आराम करते थे। ये उनका डेली का शेड्यूल था, मतलब डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे वो, डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे और वो भी पैदल जाके, और पूरा ये रूटीन पैदल है इस प्रकार से सनातन। इसलिए छह गोस्वामी में से ना ब्रज के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम किया ना, वो सनातन गोस्वामी पाद को। सनातन गोस्वामी पाद को ब्रज के सारे लोग बाबा करके पुकारते थे। इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, आप गुरु पूर्णिमा एक बार कभी तो आ जाइए। गुरु पूर्णिमा के समय ना, आज आप जितना भीड़ देख रहे हैं ना, उसके कई लाख गुना भीड़ रहता है गुरु पूर्णिमा को, एक दिन के लिए केवल, क्योंकि गुरु पूर्णिमा सनातन गोस्वामी पाद के उनके उनको स्मरण करके मनाया जाता है, क्योंकि ब्रज के जितने भी वासी थे सब लोग बहुत प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी पाद को, इसलिए उस पूर्णिमा को कहते बाबा की पूर्णिमा, बाबा की पूर्णिमा कहते हैं सारे ब्रजवासी। इसलिए आप अगर पूर्णिमा के दिन आ गए ना, आप देखेंगे कि वहां पे स्टेशन पे ना पूरे यूपी के लगभग 20,000 से 25,000 बसों को लगा दिया जाता है वहां पे, इतने आते हैं यात्री कि वो उनको फ्री में वहां से लेकर गोवर्धन छोड़ा जाता है। सब लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और इस ऐसा स्मरण करते हैं कि हम गोवर्धन परिक्रमा सनातन गोस्वामी बाबा के साथ कर रहे हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है गुरु पूर्णिमा के दिन। कार्तिक में भी इतना भीड़ नहीं होती जितना गुरु पूर्णिमा के दिन भीड़ होता है सनातन गोस्वामी पाद के स्मरण में। तो सनातन गोस्वामी पाद का ये डेली का शेड्यूल, भजन से वो गोवर्धन परिक्रमा, फिर मथुरा में मधुकरी, मधुकरी करके वापस आकर भजन करते थे। तो एक दिन की घटना है कि जब वो गोवर्धन परिक्रमा कर लिए, कहां पे गए? मथुरा। मथुरा में गए मधुकरी करने के लिए। मधुकरी करते करते उन्होंने एक दृश्य को देखा, एक दृश्य, एक परिवार है चौबे परिवार, उस परिवार के में दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम मदन था और दूसरे बच्चे का कुछ तो नाम था जो कि चौबे खानदान का ही वो लड़का था, और दूसरा मदन जो था उसका फ्रेंड था, वो फ्रेंड था उसका। तो उन्होंने देखा दो बच्चे खेल रहे हैं और उनको ये दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा, उस घर से उन्होंने भिक्षा मांगा। जनरली एक जगह से जब एक दिन भिक्षा मांग लेते थे दूसरे दिन वहां पे नहीं जाते थे, लेकिन उस बच्चों का खेल वाला दृश्य देख रहे ना, उनको बहुत मन ही मन बहुत प्रफुल्लित, बहुत आनंद महसूस होने लगा, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। तो उस दृश्य को याद करते हुए, उन बच्चों का खेल को याद करते हुए सनातन गोसाई पाद जब दूसरे दिन आए तो फिर से उसी घर में गए, फिर से उसी घर में गए, क्योंकि उसको उन बच्चों को देख के बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने आज फिर दूसरे दिन उन्होंने ये दृश्य देखा कि दोनों बच्चे खेल रहे, कौन सा, चोर सिपाही का खेल खेल रहे है ना, चोर सिपाही का खेल खेल रहे, और उसमें जो चौबे का बच्चा है वो क्या करता है, कुछ तो जीत जाता है, वो खेल में जीत जाता है। तो क्या बोलता है मदन को ये बोलता है कि तुम अभी घोड़ा बनो, अब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाऊंगा, ये शर्त था उस खेल का। तो ये सारे दृश्य जो है सनातन गोस्वामी पाद देख रहे थे, सनातन गोस्वामी पाद देख रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि जब ही वो चौबे का पुत्र जो मदन को बोल रहा है तुम घोड़ा बनो, लेकिन मदन क्या बोल रहा है, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, और भागने लगा। भागते 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 उस घर के अंदर जो मंदिर था उसमें चले गए, और ये जो दूसरा लड़का खोज रहा है मंदिर के अंदर, खोज वाला मिले ही नहीं, और ये दृश्य देखकर सनातन गोस्वामी पाद समझ गए ये मदन और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण है, ये समझ गए, वो तुरंत समझ गए। और उसके बाद जब ये तीसरे दिन फिर से अभी बार बार उसी घर में जा रहे भिक्षा करने के लिए फिर से, क्योंकि ये दृश्य भी उनको कंफर्म हो गया है तो मदन ही है, इसलिए उसका दर्शन करने के लिए वापस गए। और वापस गए तो उस समय माता को कुछ उपदेश देने लगे कि माते आपका ये जो दोनों पुत्र है ना कोई साधारण पुत्र नहीं है, इसलिए आपने बहुत सावधानी पूर्वक इनकी सेवा पूजा किया करो, मतलब उनको खिलाना इत्यादि, आप थोड़ा स्नान करके थोड़ा पवित्र होके अच्छे कपड़े पहन के इनको कलेवा किया कराया करो, भोजन इत्यादि को भोग को बनाया करो, इस प्रकार से थोड़ा उपदेश देने लगे। माता ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं आज से ऐसा ही करूंगी, क्योंकि ब्रज के लोग सभी लोग सनातन गोस्वामी को प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने बोला करके वो तुरंत ही दूसरे दिन से पालन करने लगी। और दूसरे दिन से पालन करने लगी तो क्या हुआ कि अभी सुबह उठ के नहाना, फिर नहा धो के नित्य क्रिया करने में काफी लेट हो गया, और अपना ड्रेस वगैरह अच्छा पहनने में काफी लेट हो गया। अभी उधर क्या है, बच्चे दोनों रो रहे हैं, उनको भूख लगा हुआ है, कब से रो रहे हैं वो लोग, भूख लगा हुआ है। तभी सनातन गोस्वामी पाद आए और उन्होंने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, भूख लगा है, अभी तक खाने के लिए नहीं मिला, रोज तो मिल जाता था, तो पता लगा क्या कारण अभी तक खाने के लिए नहीं मिला, तो पता चला कि माता स्नान वगैरह इत्यादि करने में बिजी है और अपने आप को पवित्र करने में बिजी है, नए कपड़े पहनने में बिजी है, इसलिए लेट हो गया, अभी तक कलेवा बना ही नहीं, अभी तक कलेवा हुआ ही नहीं है ना, भोग बना ही नहीं तो कलेवा कहां से हुआ होगा। तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी पाद उस माते के पास जाते, रिक्वेस्ट करते हैं, आप जैसे रोज खिलाते वैसे ही खिलाइए, कुछ चेंज कुछ करने के, आपको पवित्र अवित्रता कुछ देखना नहीं है, आप उनको बना के खिलाते रहिए, क्योंकि वो उसी में आप बहुत प्रसन्न रहते हैं सब। तो इस प्रकार का बोल के जब सनातन गोस्वामी पास जाने लगे तो उस मदन नाम का जो लड़का था वो जिद करने लगा, बाबा बाबा मैं आपके पास साथ जाऊंगा। तीन दिन से आ रहे थे, तो आते 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 धीरे धीरे अटैचमेंट तो हो ही गया है ना, कभी कभी ऐसा होता है भक्तों के साथ धीरे धीरे संपर्क में आने आने से ना उनसे अटैचमेंट हो जाता है, तो सावधान रहिए, आप लोग के बच्चों को भी अगर भक्तों से अटैचमेंट हो गया तो आप फुल टाइम ज्वाइन होने की संभावना है ना। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पास जब जाने लगे तो मदन नाम का जो लड़का था बोला, बाबा बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो बोले, अरे भाई किसको पूछ रहा मेरे साथ साथ जाने के लिए, मैं भिखारी हूँ, इधर भिक्षा मांगने लो जाता हूँ, जो मिलता है रूखा सूखा खा के जीवन यापन करता हूँ, तुम मेरे साथ चलेगा तो मरेगा क्या, मेरे को खिलाने के लिए तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, मैं क्या खिलाऊंगा तुमको, एक भिखारी के पास रह के तुम्हें इधर अच्छा खासा मिल रहा है इधर खाने के लिए, इधर पड़े रहो। तो बोला कि नहीं नहीं मुझे आपके साथ चलना, जिद कर लिया। तो बाबा ने बोला ठीक है चलो आ जाओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। बोले मैं कंधे पे नहीं बैठूंगा, मैं चल के चलूंगा, आप आगे आगे चलिए मैं पीछे पीछे चलता हूँ, लेकिन आप घूम के पीछे भी देखिएगा मत, जहां पे देखेंगे निश्चित रूप से मैं वही रह जाऊंगा, इस प्रकार का बोले। और उसके बाद चल दिए सनातन, ठीक है कोई बात नहीं चलो, तुमको भिखारी के घर ही रहना है तो कोई बात नहीं, आइए हमको थोड़ी ना कोई समस्या है, आ जाइए। तो उसके बाद भगवान पीछे पीछे निकल पड़े और वहां पे सनातन गोस्वामी के पास उस भजन कुटी में आकर भगवान विग्रह के रूप में, वही मदन जो है विग्रह के रूप में प्रकट हो गया सनातन गोस्वामी के इधर भजन कुटी में। तो मंदिर नहीं था, भजन कुटिया में रहते थे, भजन कुटिया में रहते थे और सनातन गोस्वामी पाद को जो भी रूखा सूखा मिलता था वो क्या करते थे, उनको देते थे। एक दिन की घटना है कि सनातन गोस्वामी पाद, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद कुछ उनके पास थोड़ी ना कुछ धन संपत्ति होता था, कुछ खरीदते थे, जो भी मिल गया तो ऐसा ही रूखा सूखा लगाते थे, उसको ग्रहण करते थे, तो अपना भजन करते थे। तो एक दिन मदन बोला, मदन जी बोले कि रोज रोज रूखा सूखा खिलाते हो, एक दिन नमक तो डाल के दिया करो। तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी पाद, इसलिए मैं बोला था तुमको कि मेरे साथ मत आओ, मेरे भजन में तुम डिस्टर्ब करेगा, अभी अभी से इधर से चले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। आज नमक मांगोगे, कल घी मांगोगे, परसों शक्कर मांगोगे, पता चला फिर मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम आपको जाना है तो यहाँ से जाओ। ये होता है देखिए भक्तों और भगवान के बीच में ये प्रेम। देखिए भगवान किसके किसके पास रह रहे, एक भिखारी के पास, लेकिन किस किस में बधे हुए है, प्रेम की डोरी में बधे हुए है। हमारे संपत्ति में भगवान नहीं बधते हैं, कितना भी संपत्ति में भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसलिए तो भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र अर्पण करो भगवान के, लेकिन प्रेम से अर्पण करो। 56 भोग दुर्योधन की तरह लगाओ, विदुर के इधर चले जाएंगे, है ना, लेकिन प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है ना, तो भगवान उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखिए सनातन गोस्वामी पाद भगा रहे कि चले जाओ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं कल से जो दोगे वही खाऊंगा, आप मुझे भगाओ मत, इधर ही रखो। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद मन ही मन सोचने लगे ऐसा कि देखिए कुछ भी हो भगवान है, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए बड़ा सा मंदिर, है ना। तो ऐसा विचार किए, तो विचार देखिए भक्त जो लोग जब विचार करते हैं, संकल्प करते हैं ना, तो निश्चित रूप से भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए कभी भी ना प्रार्थना जब करते हैं ना, तो हमको भक्तों के माध्यम से प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करिए ना थोड़ा, क्योंकि भक्तों का प्रार्थना भगवान सुनते हैं। हम डायरेक्टली प्रार्थना करेंगे तो पता चला कि हमारा वो स्थिति नहीं हो, भगवान सुनेंगे ही नहीं। तो भक्तों के माध्यम से, भक्त लोग एक बार संकल्प कर लिए ना, तो निश्चित रूप से भगवान उसको सुनते हैं। तो संकल्प ऐसा मन के अंदर विचार आया केवल सनातन गोस्वामी पाद के, कि एक भगवान के लिए एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। उसी समय क्या हुआ, एक व्यापारी मुल्तान देश का राजा था, मुल्तान देश का राजा कृष्णदास कपूर उसका नाम था, बहुत बड़ा व्यापारी था, नमक का व्यवसाय था उसका। तो वो क्या करता था, यमुना के रास्ते वो नाव से जा रहा था, यमुना के रास्ते नाव से जा रहा था, और रात्रि का समय था, और क्या हुआ उसकी नाव जो है ना वो रेत में फंस गई, यमुना में कम पानी था, और कम पानी होने के कारण किसी रेत के अंदर उसका नाव फंस गया, और आधी तूफान का भी मौसम बना हुआ था पूरा। तो व्यापारी बहुत डर गया, क्योंकि उसका पूरा माल उसमें भरा हुआ था, बहुत बड़ा व्यवसाय व्यापारी था, व्यवसाय के लिए जा रहा था वो, उसकी जितने भी उसके लोड था इसमें नाव के अंदर, तो डर गया कि कहीं नष्ट ना हो जाए, कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो उसने मदद मांगने के लिए उसने इधर उधर सब जगह देखा कि किसी से तो मदद मांगना चाहिए, लेकिन उस वीरान जंगल में तो कोई दिख नहीं रहा था। उसको एक लाइट दिखा, उस यमुना में से एक लाइट दिखा जलते हुए, वो लाइट इस आदित्य टीला के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटीक में वो लाइट दिखा उसको रात्रि के समय। तो तुरंत ही उधर के वहां से भाग कर आया कि वहां पे कोई ना कोई रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगा ही। तो वहां पे जाकर उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद के पास बैठ कर प्रार्थना करने के, प्रभु हमको कुछ रास्ता बताइए, हमारी नौका वहां पे फंस गई है, नौका फंस गई है, और मैं व्यापारी हूँ और मेरा सारा माल उसके अंदर भरा हुआ है, कहीं इस आधी तूफान के चक्कर में सब कुछ नष्ट ना हो जाए, आप मेरी मदद करिए कुछ, या तो कुछ उपाय बताइए कैसे बचा जाए। तो सनातन गोस्वामी पाद वाला, देखो भाई गलत जगह पे आ गए हो, लेकिन मैं सही रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो किसी इस प्रकार की योजना है नहीं कुछ। एक काम करो, तुमको अगर बचना ही है तो ये जो मदन है ना उसके शरण में चले जाओ, उसके शरण में जाओ तो निश्चित रूप से तुम्हारे कुछ न कुछ तो रक्षा करेगा, कुछ न कुछ तो करेगा, उसके शरण में जाओ। और व्यापारी तुरंत ही मदन मोहन के चरणों में गिर पड़ता है और प्रार्थना करता है कि मेरा व्यापार अगर ये सारे सामान अगर बच गया और वो व्यापार करने गया और उसमें जो प्रॉफिट होगा निश्चित रूप से मैं आपके लिए कुछ तो बनवाऊंगा, मंदिर जैसा मंदिर, एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा आपके लिए है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने तो संकल्प किया ही था और भगवान तो पूरा किए तुरंत, हाँ उसके तुरंत ही उसका नौका निकल जाता है बाहर, और उसके बाद वो जाता है, अभी इस बार उसका प्रॉफिट ना कई गुना 10 गुना ज्यादा हो गया, है ना, हर बार से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मंदिर बनवाना था ना, उसने बोला जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी सेवा में लगा दूंगा, तो इस बार 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वो जो मुल्तान देश का राजा कृष्णदास कपूर, उसने फिर मदन मोहन मंदिर को भगवान के लिए विशाल मंदिर बनाया। तो अभी जो मंदिर दिखता है वो 1 फ्लोर का है, लेकिन 7 फ्लोर के मंदिर थे। कहते हैं कि दिल्ली से जब औरंगजेब का, मुगलों का जब शासन था ना, दिल्ली से औरंगजेब उसको देखता था और उसको सहन नहीं होता था, सहन नहीं होता, इसलिए मुगलों का आक्रमण, जब उन्होंने आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, उसके शिखर को, उसको सहन नहीं होता था, दिल्ली से दिल्ली किले से दिखता था उसको, तो वो ध्वस्त कर दिया। तो अभी जो मंदिर फिलहाल है, वो जो मंदिर है ना, टूटा हुआ मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार टूटे हुए मंदिर में भगवान जी नहीं रहते हैं, नहीं रखना चाहिए भगवान जी को, वहां पे नहीं रहते भगवान जी, क्योंकि टूटे हुए स्थान पे नहीं रहते हैं। तो आप लोगों ने जो दर्शन तो किया होगा, तो वहां पे है विग्रह, ब्रजवासी लोग रखे हुए है विग्रह, लेकिन मंदिर टूटा है इसलिए उनके जो दूसरे विग्रह है वो उसी मंदिर के नीचे जो है ना एक और मंदिर है, वहां पे विग्रह को एक मंदिर बनाया गया और वहां पे विग्रह को स्थापना की। वैसे मूल जो विग्रह है वो तो जयपुर चले गए हैं, क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, जितने भी ब्राह्मण थे ना, जितने भी वृंदावन के मूल विग्रह थे, वो कहां पे भेज दिए, जयपुर में, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े राजा रहते रहा करते थे, तो उनकी सेवा पूजा अच्छे से करेंगे, इसलिए वहां पे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन कुछ मूल विग्रह अभी भी वृंदावन में है। वैसे भी अभी भी जो विग्रह है, चाहे मदन मोहन गोविंद हो, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं ना, वो प्रतिबिंब विग्रह है। प्रतिबिंब विग्रह मतलब वो मूल विग्रह और उसमें प्रतिबिंब विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो हम जो दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मूल विग्रह तो वहां पे है, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब विग्रह मतलब वो रियल, वही विग्रह का स्वरूप है। तो हमको जो मूल विग्रह का दर्शन करने से फल प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वो प्रतिबिंब विग्रह का भी दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कृष्णदास कपूर जो व्यवसायी था, उसने इस प्रकार का मंदिर का निर्माण किया और वहां पे मदन मोहन जी बहुत सुंदर तरीके से वहां पे रहने लगे। तो मैंने, समय हो गया, चले खत्म करें, कंटिन्यू रखे। तो मैंने मुख्य तीन, चलिए सबका वर्णन करें तो शायद काफी समय हो जाए, इसलिए हम मुख्य जो तीन जो विग्रह है उनका, उनके बारे में बताते हैं। तो दूसरा मुख्य विग्रह कौन से है, गोविंद देव कोई गए आज नहीं गए कोई, ठीक है। वैसे भी संध्या समय में आप लोग जल्दी आ जाते हो, है ना, तो जनरली 8 बजे तक मंदिर बंद होते हैं। तो कभी भी इन मंदिरों का दर्शन करना है, रिक्शा करिए जाके दर्शन, रिक्शा मतलब वो टेम्पो वाला रिक्शा नहीं, वो बैटरी वाला रिक्शा चलता है ना, वो करिए, या तो फिर साइकिल वाला करिए, तो वो सब जगह करा देगा दर्शन। तो गोविंद देव का प्रणाम मंत्र, क्या है प्रभु जी प्रणाम मंत्र, जयताम श्री, ये तो इनका हो गया, द्रिव्यत वृंदावन कल्पुरु दुमादा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्तो श्रीमद राधा शील गोविंद देव पृष्ठालिविशेभ्य मानो स्मरामि। शील गोविंद देव जो कि उनका, पहले हम प्राकट्य गोविंद देव का कैसे हुआ, गोविंद देव जिस प्रकार से हम जानते देखे कि सनातन गोस्वामी पाद ने किसका प्राकट कराया, मदन मोहन जी का प्रकाश, सेम उसी प्रकार से उनके दूसरे जो गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद, जो उनके भी भाई रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने ये गोविंद देव का प्राकट्य कराया। गोविंद, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद दामोदर मंदिर में, दामोदर मंदिर गए, दामोदर मेरा रिक्वेस्ट है कि दामोदर मंदिर जरूर जाने का, कैसे भी करके आए हैं तो दामोदर मंदिर में जाने का, क्योंकि दामोदर मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना भक्तों के लिए, वह है राधा दामोदर मंदिर। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार करने से पहले राधा दामोदर मंदिर में ही कई सालों तक बिताए और वहां पे उन्होंने ग्रंथों की रचना की और वहां पे बहुत सारे भक्तों का समाधि है, है? और वहां पे सनातन गोस्वामी पाद को जो गोवर्धन शिला भगवान ने दिया था, बहुत सारे विग्रह है वहाँ पे, जीव गोस्वामी पाद द्वारा सेवित विग्रह है, मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रह है, चार फरिक माया
चार करो पूरा गोवर्धन का हो जाएगा।
एक बार की घटना की सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन परिक्रमा करते करते अंत में बूढ़े हो गए फिर भी वो परिक्रमा छोड़े नहीं कभी। लेकिन भगवान एक दिन परिक्रमा के समय प्रकट हो गए उनके सामने, आज से आप परिक्रमा नहीं करेंगे, आप इतना जीर्ण हो चुके रोज परिक्रमा कर आपको लगाने की जरूरत नहीं। सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि नहीं मैं तो परिक्रमा डेली करूंगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाए मर जाऊं लेकिन परिक्रमा मैं डेली करूंगा। भगवान ने एक शिला को दिया, आप इस शिला को लेके जाइए और अपने स्थान में रखिए वहां पे, और उसकी रोज चार बार परिक्रमा करिए, गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। इसलिए वो जो शिला है उसी दामोदर मंदिर में है, उस दामोदर मंदिर का चार बार परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। वो भक्त ध्यान से सुने जो गोवर्धन परिक्रमा नहीं करने वाले हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे कि नहीं करने वाले हैं क्योंकि भाई 23 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7-8 घंटे लगेंगे। हम लोगों ने परिक्रमा पूरे ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था शाम को 5 बजे और रात को 1 बजे खत्म किया, रात को 1 बजे खत्म, शाम को 5 बजे शुरू किया, रात को 1 बजे खत्म किया और 2 बजे वृंदावन में आए अपने निवास स्थान पे। तो उस दामोदर मंदिर में निश्चित रूप से जाए। तो रूप गोसाई पाद उसी उनका भजन कुटी भी है और उनकी समाधि भी है रूप गोसाई पाद की वहीं पे। तो रूप गोसाई पाद बहुत सारे ग्रंथों की रचना वगैरह करते थे। एक दिन की बात है कि एक बालक उनके पास प्रकट हो गया आया कि एक स्थान पे लेके गया उनको। वो कौन सा स्थान है, जो गोविंद देव का मंदिर है अभी, वो भी एक टीला था, टीला वो भी देखिए काफी ऊंचे पे है। उस टीले के ऊपर लेके गया और उसने बताया कि एक गाय जो है ना इस टीले के ऊपर जो कि एक स्थान है, उस स्थान पे रोज गाय आती है और उसका परिक्रमा करती है 7 बार, परिक्रमा करके अपना सारा दूध जो है ना ऑटोमेटिक उस टीले के ऊपर छोड़ के चली जाती है, उसका अभिषेक करके चली जाती है। तो इस प्रकार का उस बालक जो है रूप गोस्वामी पाद को बताया और उनका हाथ पकड़ के लेके गया उस टीला के पास और फिर वो बालक वहां से निकल पड़ा। वो बालक और कोई नहीं था, भगवान कृष्ण थे। उस गोविंद देव का जो विग्रह था उसको प्रकट करना था रूप गोस्वामी के हाथों से, इसलिए उनको वहां पे पकड़ के लेके गए और रूप गोस्वामी पाद ने फिर तुरंत ही बात को समझ गए और वहां पे उन्होंने खुदाई करके उस गोविंद देव का जो प्राकट्य कराया वहां पे। तो गोविंद देव जो मंदिर है वो रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट कराया और साथ साथ में बीच बाजार में गोपीनाथ बाजार है भगवान के नाम से, गोपीनाथ बाजार के अंदर गोपीनाथ जी का मंदिर है और वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रकटित कराया और उसके बाद मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रह है वो। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य विग्रह जो है ना, कौन कौन से, राधा मदन मोहन और राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ, ये तीनों हमारा जो 3 प्रकार का जो ज्ञान है ना, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, इन तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। संबंध अर्थात हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध हमारा भगवान के साथ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य रूप से कृष्ण के दास हैं, है ना, ये जो संबंध ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जो मदन मोहन जी है इसको प्रकटित कराते हैं उनके चरणा उनके शरणागत लेने से, उनकी प्रार्थना करने से, उनके शरण में जाने से, ये हमारा जो ज्ञान है ना, संबंध ज्ञान, वो प्रकट हो जाता है कि हम क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य दास है। और उसके बाद गोविंद देव जी है जो वो अभिधेय, अभिधेय क्या मतलब, अभी हमारा संबंध पता चल गया तो हम क्या करेंगे, कृष्ण के नित्य दास हैं, तो नित्य दास है तो उसको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और सेवा करना चाहिए तो इस ज्ञान की जो पुष्टि होती हो गोविंद देव के करते हैं। और उसके बाद गोपीनाथ जी का प्रयोजन, इस संबंध को जानना और सेवा करना और अंतिम उपलब्धि क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, यह है प्रयोजन और इसको गोपीनाथ जी करते हैं। उसके अधिष्ठाता देव गोपीनाथ जी हैं और सबके अलग अलग आचार्य हैं और इस ज्ञान को प्रदर्शित कराते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन देखिए इन तीनों विग्रहों का अगर एक साथ में दर्शन करना है तो एक मंदिर है, कौन सा मंदिर, राधा रमण मंदिर, वो भी जाएगा। देखिए राधा दामोदर मंदिर करेंगे, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट लगेगा, रिक्शा करेंगे तो 5 मिनट में पहुंचा देगा। निधिवन के जस्ट बाजू में है, निधिवन है, निधिवन के बाजू में राधा रमण जी है, जस्ट बाजू में, उनके दीवार को लग के मंदिर है। तो राधा रमन विग्रह, राधा रमन विग्रह जो है बहुत महत्वपूर्ण विग्रह है, क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हुआ ना तो ऑलमोस्ट सारे मंदिरों को उन लोगों ने तोड़फोड़ किया। गोविंद मंदिर भी बहुत ऊंचा था, एक माला है वो, अभी जो है वो भी सात माले का था, तो कितना विशाल होगा सोचिए, उसको भी सारे मुगल लोग आक्रमण किए तो तोड़ डाले। तो और उनका भी जो प्रतिमा विग्रह है ना मंदिर के पीछे है, क्योंकि खंडित हो गया मंदिर, तो मंदिर के पीछे एक और मंदिर है, वहां पे रोज नित्य रूप से सेवा पूजा चलता है। तो राधा रमन जो का विग्रह जो है ना, इन तीनों विग्रहों कहते हैं कि राधा रमन विग्रह, वो जो मूल विग्रह है ना, राधा रमन जी बाहर नहीं गए, दो विग्रह वृंदावन से बाहर नहीं गए। हाँ। मुगलों का आक्रमण होता, कौन कौन से?
एक राधा रमन, दूसरा
बाके बिहारी। उसमें रात को रासलीला खेलने गए थे निस्दीवन में, इसलिए कहते हैं कि वो बाहर गए नहीं। और दूसरा राधा रमन जी है ना, बहुत छोटे विग्रह है, लगभग 12 इंच के विग्रह होंगे, तो बहुत छोटे विग्रह है। और वो उस समय पुजारियों ने उनको छुपा दिया, मान लो जेब में रख दिया, अपने साथ ले लिए। बाकी सब विग्रह तो बड़े बड़े थे, देखिए गोविंद देव जयपुर में कितने बड़े हैं, गोपीनाथ जी कितने बड़े, बड़े बड़े तो राजाओं के पास भेज दिए, लेकिन राधा रमन जी को छुपा लिया अपने पास ही। और राधा रमन जी का प्रकट ना गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्हीं गोस्वामियों से, मैं बोला ना गोस्वामियों का महत्व कितना है, ये गोस्वामियों ने प्रकटित कराया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने विग्रह को प्रकट कराया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका जन्म साउथ के श्रीरंगम क्षेत्र में हुआ था, उनके पिता का नाम वेंकट भट्ट, और उसके बाद बचपन में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ये चतुर्मास की समय जब ये एक जगह पे निवास स्थान किए थे, तो वेंकट भट्ट के घर में किए थे। और बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का 4 महीनों के लिए साथ मिला, किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत सारे आदेश देके वहां से निकल पड़े थे 4 महीने के बाद, और उन आदेशों को केवल उन्होंने पालन किया। आदेश ये थे कि मृत्यु पर्यंत अपनी माँ बाप का सेवा करना, और बाद में शादी मत करना, वृंदावन चले जाना, ये उपदेश था चैतन्य महाप्रभु का गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। उसके बाद माता पिता का सेवा करने के बाद उनके भगवत धाम जाने के पश्चात, कथा बहुत लंबी है, मैं बहुत भाग रहा हूँ, तो चेतन महाप्रभु के निर्देशानुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ पे आ गए? वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर वह भजन करने लगे, और उसके बाद एक दिन की घटना है कि वो प्रचार क्षेत्र में निकले थे बाहर, और करते करते वो कहाँ पे? नेपाल पहुंच गए। नेपाल के गंडकी नदी के पास, नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है गंडकी नदी, उस नदी में आप हाथ डालेंगे तो क्या मिलेगा? शालिग्राम प्राप्त होंगे, ऐसा हाथ डालेंगे तो शालिग्राम निकलेंगे, उसमें शालिग्राम है ना। तो वो गंडकी नदी के किनारे गए, थोड़ा सोचे कि जल का पान करे, थोड़ा से फ्रेश हो ले जल का पान करने के लिए, तो वो गंडकी नदी के पास गए। तो गंडकी नदी के पास गए, जैसे ही उन्होंने जल को उठाया तो उनके हाथ में कई सारे शिला आ गए। तो बोले अरे अरे शिला क्यों आ गए, फिर वापस छोड़ दिया। फिर से पानी में, फिर से शिला आ गए। कितना भी बचाने का प्रयास कर रहे, बार बार, तीन बार उन्होंने देखा कि बार बार आ जा रहे, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि भगवान शालिग्राम जो है ना मेरी सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं मेरी सेवा को, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एक साथ में जो शालिग्राम थे वो लेकर उन्होंने वापस वृंदावन आ गए। टोटल 12 शालिग्राम थे, उन शालिग्राम को सेवा करने के लिए वो लाकर वो अपने भजन कुटी में वो सेवा करने लगे। तो एक दिन की घटना है कि एक बड़ा व्यक्ति या व्यापारी समझिए, जो कि वो आया, उनके भजन कुटी का दर्शन वगैरह किया, और उनको कुछ आभूषण प्रदान किए भगवान जी की सेवा पूजा के लिए, और लेके ही आया था वो कि किसी मंदिर में किसी बाबा को दे दूंगा सेवा में लगाने के लिए। चैन हो, अंगूठी है, ये मुकुट है भगवान जी के, सारे चीजें उन्होंने क्या किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को दिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तो ले तो लिए, लेकिन विचार करने लगे कि इसका लेके मैं करूंगा क्या, हाँ मेरे पास तो शालिग्राम है, और शालिग्राम की सेवा पूजा के लिए केवल तुलसी जल काफी है, तो तुलसी जल ही कहते हैं, और उनको तो कुछ आभूषण पहना नहीं सकते हैं, लेकिन ये आभूषण मेरे पास आ गए। तो विचार करते करते उन्होंने कुछ आभूषण रख तो दिया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वो सोच रहे थे कि आभूषण रखा हूं, ये प्रभु आप अगर विग्रह रूप में रहते हैं तो मैं बहुत सुंदर तरीके से आपका ड्रेसिंग करता, इस मुकुट को पहनाता, इस माला को डालता, हार को पहनाता, बहुत सुंदर तरीके से आपकी मैं इस प्रकार से को सजाता। तो सनातन में बोला ना, भक्तों का जो विचार कर लिया उन्होंने, ये संकल्प कर लिया, जैसे ही विचार ये आया तुरंत भगवान पूरा है। उस रात्रि नरसिंह चतुर्दशी का दिन था है ना, उस रात्रि उस बारहो शिला में से एक जो दामोदर शिला था उसमें से राधा रमन जी का प्राकट्य हो गया। वो जो विग्रह है जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ना, वो शालिग्राम पूरा अखा विग्रह शालिग्राम है। वो विग्रह एक दामोदर शिला का जो शिला था वो विग्रह का शेप ले लिया और उस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से सेवा पूजा किया। और राधा रमन मंदिर में जब प्रभुपाद जी दर्शन करने के लिए जाया करते थे ना, तो हमेशा बोलते थे अपने भक्तों को, सबको ये बताते थे कि यहाँ का जो विग्रह सेवा करने की विधि है ये हमारे मंदिरों में करो, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड जो है ना बहुत हाई है। राधा रमन जी का जो सेवा पूजा करने का जो स्टैंडर्ड है विग्रह सेवा का बहुत हाई है। कहते हैं कि कोई एक आभूषण भी आज तक मिस नहीं हुआ है, इतना परफेक्ट मैनेजमेंट है वहां का, एक आभूषण भी नहीं। और एक आभूषण को पहनाने के लिए कई लोग के पास चाबियां होता थी, और जब एक साथ में इतने लोग इकट्ठे होते थे ना उनका एक आभूषण बाहर निकलता है, इतना सिक्योरिटी है उन आभूषणों के लिए। तो प्रभुपाद जी बहुत लाइक कर बहुत पसंद करते थे कि हमारे मंदिरों में इस प्रकार का स्टैंडर्ड को बढ़ाना है डीटी वर्शिप का, है ना। बहुत सुंदर तरीके से सेवा पूजा चलती है राधा रमन जी की आज भी, बहुत सुंदर विग्रह है। तो इस राधा रमन देव का दर्शन करने गए और फिर विग्रह का प्रकट हुआ, प्रकट हो गए तो फिर सारे गोस्वामी बहुत उस समय ना वृंदावन धाम में पूरा तहलका मच गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जिस शालिग्राम की पूजा कर रहा था आज वो शालिग्राम विग्रह बन गए, विग्रह। इस प्रकार से न्यूज फैल गया, सारे गोस्वामी जितने भी भक्त थे सब भाग भाग के कहां पे जाने लगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के इधर उसका दर्शन करने के लिए, उस विग्रह का दर्शन करने के लिए। और सारे गोस्वामियों ने मिलकर, सारे भक्तों ने मिलकर उस विग्रह का नाम राधा रमन दिया। राधा रमन उस विग्रह का नाम है, राधा मतलब राधा रानी नहीं, राधा रमन, जो राधा के साथ रमन करते हैं उसको राधा रमन। तो ये नाम है राधा रमन, इसलिए जब भी उनका उनके लिए कीर्तन करते हैं उनके साथ में राधा रानी को रखेंगे तो क्या बोलेंगे, राधा राधा रमन है? राधा राधा रमन। तो मेरे बात बोलिए, जय राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे, राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे, जय राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे, राधा रमन, राधा राधा रमन राधे। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राण धन हे, गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राण धन हे, जय राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे, जय राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे, जय राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे, जय राधा राधा रमन, राधा राधा रमन राधे। तो इस प्रकार से उनका नामकरण किया गया और बहुत सुंदर तरीके से उनकी सेवा पूजा आज भी चल रही है राधा रमन जी की। तो इस राधा रमन के जो विग्रह है, इस विग्रह का जब दर्शन करते हैं ना तो उनके चरणों का दर्शन करते हैं तो गोविंद देव के दर्शन का फल प्राप्त होता है, और उनके वक्षस्थल का दर्शन करते हैं तो राधा गोपीनाथ गोपीनाथ जी का दर्शन का फल प्राप्त होता है, और मुख कमल का दर्शन करते हैं तो राधा गोविंद देव का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है राधा रमन जी का दर्शन करना चाहिए, और राधा रमन जी का दर्शन करिए और साथ साथ में उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि है उनका भी दर्शन, साथ साथ में बाजू में गोकुलानंद जी का मंदिर है और बहुत सारे आचार्यों की समाधि है वहाँ पे, लोकनाथ गोस्वामी, भुगर गोस्वामी जो भी शुरुआत में ब्रज में पहले से आए हुए थे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर दर्शन है। और साथ साथ में अब गोविंद देव मंदिर से थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड में का दर्शन करने के पश्चात थोड़ा आगे जाएंगे तो मैंने क्या बोला कि ब्रज को रक्षा करने के लिए चार महादेव हैं, कौन कौन से, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, याद रखिए, और उसका वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव, तो चार महादेव में से एक जो वृंदावन में है कौन सा है, गोपेश्वर महादेव। तो उस ब्रह्मकुंड गोविंदो का दर्शन करने के पश्चात आगे जाएंगे, बहुत बड़ा एक साउथ का एक मंदिर है, उसका भी दर्शन कर सकते हैं, वहां पे विष्णु जीवन निवास कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रह्मकुंड का दर्शन करने के पश्चात थोड़ा और आगे जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव, उनका नाम, भगवान का नाम गोपेश्वर महादेव क्यों पड़ा, गोपेश्वर मतलब गोपी, गोपेश्वर, गोपेश्वर महादेव इसलिए पड़ा कि भगवान शिव जी, जिनके बारे में कहा जाता है निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि वैष्णवानाम यथा शंभु। अरे तो निम्न गानाम यथा गंगा, जिस प्रकार से सारी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि, सारे देवताओं में कौन सा सर्वश्रेष्ठ देवता है, भगवान कृष्ण दे अच्युत, देवानाम अच्युतो हरि। इसी प्रकार से सारे वैष्णवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथाशंभु, शिवजी सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार शिवजी अपनी भार्या पत्नी पार्वती पार्वती को, क्योंकि नित्य निरंतर वो कथा करते रहते हैं, शिवजी और दूसरा कार्य करते नहीं, केवल भगवान का स्मरण करते हैं, नहीं तो भगवान की कथा करते हैं, ये दो ही कार्य करते हो। जब ये आंख बंद करके आपने शिव जी को जो भी पोस्टर चित्र देखा होगा, तो किसका नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं भगवान शिव जी, क्योंकि इसलिए तो उनको बताया गया ना कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है, सिर मौर्य है। तो एक बार की घटना है कि शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, कोई नहीं रहता तो पार्वती को सुनाते हैं, इससे हमको पता चलता है कि एक लोग भी रहे तो कथा करने का है ना, है ना, ऐसा नहीं कि भीड़ है तो भी कथा करने का, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि आप लोग रेस्ट कर सकते हो, हम कथा करते रहेंगे। तो माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते उन्होंने भगवान के इस वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे, और वृंदावन के विशेष करके जो मधुर से मधुर लीलाएं, विशेष करके रास लीला इत्यादि का वर्णन कर रहे थे, तो उनके मन के अंदर प्रगाढ़ एक इच्छा उत्पन्न हुई कि इस रास लीला में मैं भी भाग लूं, कभी कब हमारा उस दिन आएगा, कब हमारा सौभाग्य मिलेगा हमको कि इसमें रास लीला के अंदर प्रवेश पाऊं, क्योंकि बड़े से बड़े ऋषि मुनि, मैंने वहां पे बरसाना में बताया था कि ब्रह्मा जी ने सतयुग के अंत में तपस्या किया, तपस्या करके क्या मांगा कि प्रभु आपका जो भौम वृंदावन में जो लीला है मुझे उसमें भाग मिले, तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में आ गए और भगवान उनके ऊपर प्रेरणाएं किए, लीलाएं किया इस प्रकार से। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तपस्या करके इस लीला के अंदर भाग लेना चाहते हैं, इस रास लीला जो सर्वोत्तम लीला है भगवान की, इस लीला में हर एक भक्त भाग लेना चाहते हैं। तो शिव जी को ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे भी इस रास लीला में भाग लेना है। तो एक दिन की बात है कि उस वंशीवट के तट पे, बस गोपेश्वर महादेव के बाजू में वंशीवट है, वहां पे वंशीवट के में भगवान की रास लीला, पूर्णिमा का समय, रास का समय, डेली रात्रि को तो रास होता ही है, तो उस समय शिव जी ने क्या किया, तुरंत ही उस रास लीला में भाग लेने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए उस रास लीला के मंडल तक पहुंच गए, गेट तक पहुंचे, तो तुरंत ही गोपियां उनको वहां से भगा दी। यहाँ पे किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, यहाँ पे कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, तुमको एक गोपी बनना पड़ेगा, तो तुरंत ही भगा दिया। शिव जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि मन के अंदर प्रखंड इच्छा थी उस रास का दर्शन करने के लिए, तो शिव जी ने इस प्रकार से बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने प्रश्न पूछा उन गोपियों से कि इस रास को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय बताइए ताकि मैं इसमें भाग ले सकूं। तो गिड़गिड़ाने लगे शिव जी, और उस प्रकार से उन गोपियों ने कहा कि एक काम करो, तुम पूर्णमासी जो है ना उसकी शरण में जाओ, निश्चित रूप से पूर्णमासी तुमको कुछ ना कुछ तो उपाय बता देगी। पूर्णमासी जो है भगवान की लीलाओं में, विशेष करके भक्तों को उसमें सहयोग करती है वो, तो इसलिए गोपियों ने कहा कि जाओ तुम पूर्णमासी के पास, पूर्णमासी के पास जाओ और निश्चित रूप से तुमको कुछ ना कुछ तो उपाय बताएगी। और पूर्णमासी के पास शिव जी गए, और शिव जी को पूर्णमासी ने
शिव जी वर्णन किया कि मुझे इस प्रकार से रास में भाग लेना है, रास का दर्शन करना है और इस इच्छा को प्रकट किए, और पूर्णमासी ने क्या किया, तुरंत ही उनको सहायता किया और तुरंत ही उनको ले जाकर उस जो ब्रह्म कुंड है उस ब्रह्म कुंड में उनको एक बार डुबाती है और उनको एक गोपी का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। शिव जी को गोपी का स्वरूप प्राप्त होता है और गोपी का जैसे ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है क्या करते हैं, लेके रास मंडल में उस बंसी वट के तट में उसे उनको किसी एक कोने में ले जाके बैठा देते हैं। अब तो कोई पहचान नहीं है ना, गोपी बन गए। और इस प्रकार से गोपी बनने के बाद हुआ क्या यूं कि रासलीला प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ तो कोई रस नहीं आ रहा है, कोई भी रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है। सब लोग विचार करने लगा आज हो क्या रहा है, कोई आनंद नहीं आ रहा है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखे, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन जब कर रहे थे तो उसमें कोई तो एक ब्रह्मचारी तो जो बाहर से देख रहे थे है ना, तो उसमें आनंद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोई तो ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई तो एक ऐसा है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए है ना। इसी प्रकार से शिव जी गोपी के रूप तो धारण करा दिया पूर्णमासी ने और उनको किसी एक कोने में बैठा भी दिया। उस बंसी बट के रास मंडल में आप देखेंगे ना आज भी गोपेश्वर महाराज जहाँ कोने में बैठे थे वो भी स्थान है, तो बेचारे बैठ के देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबको प्रॉब्लम है कि किसी को आनंद नहीं आ रहा है, सब लोग विचलित होने लगे, विचार करने लगे कि आज आनंद क्यों नहीं आ रहा, आनंद क्यों नहीं आ रहा। तो खोज करते करते पता चला कि यहाँ पे तो एक कोई बहुरूपिया बैठा हुआ है, ये गोपी का रूप धारण करके बैठा हुआ है। तुरंत ही सारे गोपियों ने उनको क्या बोलते हैं, चिकोटी काट काट के काट काट सब एकदम परेशान कर डाले कि तुमको बोला बहुरूपिया बहु का वेश बनाकर तुम यहाँ पे आ गए, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, मैं पहले ही बोला था। तो बहुत तकलीफ दिया उनको, बहुत चिकोटी काट काट के उनको परेशान कर डाला। अभी वो तो शिव जी वहां पर रोने लगे, विचार करिए वैष्णवा नाम यथा संभव भगवान शिव आज कौन सी जगह पे है और किस प्रकार के रो रहे, गिड़गिड़ा रहे उस रास में, देखने के लिए जाने के लिए विचार करिए, रो रहे गिड़गिड़ा रहे, तभी पूर्णमासी आ जाती, क्योंकि सहयोग तो उसने ही किया था, फिर से कैसे भी करके कुछ तो करना है। तो पूर्णमासी ने आकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करके उनके ऊपर कृपा करने के लिए बोला। फिर भगवान ने जाकर उनके ऊपर कृपा किया, तब जाके वो कुछ रसास्वादन कर पाए और भगवान ने क्या बोला कि तुम यहाँ से जाओ और तुम आज से गोपेश्वर महादेव के रूप में फेमस हो गए और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इसलिए वहां पे गोपी शिव जी गोपी का रूप है, वहां पे मंदिर भी है छोटा से कोने में और गोपेश्वर महादेव भी बाजू में है। तो इस प्रकार से गोपेश्वर महादेव वहां पे उपस्थित है, विराजमान है। तो बहुत सारे लीलाएं हैं वृंदावन धाम की, लेकिन कल आप लोग का कुछ शेड्यूल होगा, कहीं आप लोग मिस ना हो जाए, बस छूट जाएगी है कि नहीं, कहीं तो जाने का शेड्यूल, कहाँ जाने का शेड्यूल है, कामेवन। बहुत रम्य स्थान है कामेवन, अभी तो समय हो गया, नहीं तो मैं कुछ लीलाओं को बता देता था। खैर मैंने अभी तक जो बताया उसमें से कुछ भक्तों का कुछ जो मुख्य इम्पोर्टेंस है मिस हुआ रहेगा, तो निश्चित रूप से अभी आप लोग काफी दिन है, कई दिन है, तो उसमें जाके दर्शन करिए। और साथ साथ में कामेवन जो स्थान पे आप लोग जा रहे हैं ना, वो बहुत बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर स्थान है। एक्चुअली 12 वनों में से सर्वश्रेष्ठ वन कौन सा है, वृंदावन। लेकिन दूसरा कोई प्रिय वन है अगर भगवान का सर्वश्रेष्ठ, तो है कामेवन, बहुत प्रिय जगह है। और वहाँ पे विमला कुंड है और उसके बाद उसकी बहुत कथा है, और उसके बाद साथ साथ में कामेश्वर महादेव है, व्योमासुर गुफा है जहाँ पे असुर का वध किया था, बलराम जी का चरण चिन्ह है, क्योंकि असुर का वध करते समय युद्ध हुआ था ना, भगवान कृष्ण और व्योमासुर में जब युद्ध हुआ था ना, धरती कांपने लगी थी, तो उस धरती को बैलेंस करने के लिए बलराम जी ने अपने चरणों से धरती को दबा दिया था और दबाकर अपने पिता अपने वस्त्र को उस धरती को सांत्वना दिया था कि तुम डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा ऐसा करके। तो बलराम जी का वहाँ पे चरण चिन्ह है, साथ साथ में भोजन थाली है, प्रयास करिए कि भोजन थाली में लंच करिए और उसके बाद वहाँ भी भोजन खाइए, वहाँ पे प्रसाद पाइए, भोजन थाली है। और साथ साथ में फिसलनी शिला है वहाँ पे, फिसलनी शिला बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, छोड़िएगा मत, फिसलनी शिला में फिसल के जरूर आइएगा, क्योंकि जो 7 बार याद रखिए 7 बार जो फिसलता है ना, वो वापस इस भौतिक संसार में कभी नहीं फिसलेगा, भगवान वापस उसको कभी नहीं भेजेंगे, इसलिए उस स्थान को जरूर फिसल के आइएगा। वहाँ पे बहुत सुंदर फिसलनी शिला है, 7 बार फिसलिए और उसके बाद
चरण पहाड़ी है, समय मिले तो चरण पहाड़ी पे, वहाँ पे बहुत सारे चरण है भगवान के चिन्ह, वहाँ पे हम नंदगांव में तो एक चरण चिन्ह देखे थे, लेकिन काम में बहुत सारे चरण चिन्ह है वहाँ पे, वहाँ पे देखेंगे काफी, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन सीढ़ियाँ डिफिकल्ट है, आराम से जा सकते हैं और वहाँ पे चरण पहाड़ी का भी दर्शन करिए। और साथ साथ में और भी है, पंच पांडव कुंड है, कामेश्वर महादेव है, यक्षों ने जहाँ पे ये किया था है ना, यक्षों ने पांडवों को ये किया था ना, जल पीने से मना किया था, फिर प्रश्न पूछे थे, वो भी स्थान है। और श्वेत गंगा है और ऐसे बहुत सारे स्थान रमणीय है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को भेजा है प्रभु जी को, उन स्थानों पे आप जरूर विजिट करिए, जितना ज़्यादा हो सके विजिट करके आइए, और हो सके तो फिर हम और डिटेल इसकी अगर कथा समय मिले तो फिर से यहाँ पे चर्चा करेंगे। कल
वृंदावन नाम देने के लिए कुछ विशेष कारण था क्या? मतलब
वृंदावन
नाम
नित्य धाम है वृंदावन, गोलोक वृंदावन, भगवान का आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम है ऐसा, तो ये वृंदावन धाम ये नित्य है, नित्य रूप से ये नाम है, भगवान का इसलिए ये नित्य है। हमें बोला ना प्रलय के समय भी इसका प्रलय नहीं होता है, तो सबको नींद नहीं आ रहा है,
नहीं।
फिर से कुछ शुरू करूँ क्या? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधेश, सबको मिले श्री वृंदावन धाम।
हरे
जय।
Thank you.